एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार, आज हम एक ऐसी किताब की गहराइयों में उतर रहे हैं जिसने कहना चाहिए कि इतिहास की समझ को हिलाकर रख दिया। विलियम एल शिरर की द राइज एंड फॉल ऑफ द थर्ड राइक।
नमस्कार।
ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये 20वीं सदी का एक बहुत ही भयावह अध्याय का एक बड़ा विश्लेषण है।
हाँ, और ये विषय आज भी उतना ही प्रासंगिक है, शायद पहले से ज्यादा।
हाँ,
ये किताब हमें दिखाती है कि कैसे एक आधुनिक, एक पढ़ा लिखा समाज भी वो चरमपंथ और एक तरह की बर्बरता की गिरफ्त में आ सकता है। ये लोकतंत्र कितना नाजुक है और हमें कितना सजग रहना चाहिए, इस पर एक बहुत जोरदार टिप्पणी है।
बिल्कुल, ये सिर्फ नाजी जर्मनी की कहानी भर नहीं है, ये असल में एक चेतावनी है।
हाँ,
उन संकेतों के बारे में जिन्हें हम कई बार देख नहीं पाते या नजरअंदाज कर देते हैं।
जैसे
प्रोपोगंडा का असर, या फिर सत्ता का एक जगह सिमट जाना, अल्पसंख्यकों के खिलाफ माहौल बनना।
हाँ हाँ
तो चलिए शिरर के इस बड़े गहन अध्ययन को परत दर परत खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इतिहास हमें क्या सिखाता है।
बिल्कुल। तो ये जो किताब है, इसके पीछे है विलियम लॉरेंस शिरर, और उनकी जो पृष्ठभूमि है वही इस किताब को बहुत खास बनाती है। वो सिर्फ एक इतिहासकार नहीं थे, वो एक अनुभवी पत्रकार थे, और वो भी उस जमाने में जर्मनी में मौजूद थे।
हाँ, ये बात बहुत अहम है। वो CBS रेडियो के लिए मुझे लगता है 1934 से 1940 तक बर्लिन में ही थे, रिपोर्टिंग कर रहे थे।
जी,
उन्होंने नाजी शासन को अपनी आंखों से उभरते और फिर मजबूत होते देखा। वो हिटलर की रैलियों को कवर कर रहे थे, नाजी अधिकारियों से मिल रहे थे।
हाँ, और आम जर्मन लोगों की जिंदगी पे क्या असर पड़ रहा है वो महसूस कर रहे थे। उनकी जो पहली किताब थी बर्लिन डायरी, वो इसी अनुभव का नतीजा थी।
अच्छा,
और फिर युद्ध खत्म होने के बाद उन्हें एक बहुत ही अनोखा मौका मिला। नाजियों के जो हजारों दस्तावेज जब्त हुए थे, गोपनीय कागजात, डायरियां, मीटिंग्स के मिनट्स, नूरनबर्ग मुकदमों के रिकॉर्ड्स, उन सब तक उनकी पहुंच बनी।
कमाल है।
तो सोचिए, एक तरफ तो आंखों देखा हाल और दूसरी तरफ पर्दे के पीछे की जो असलियत थी वो बताने वाले दस्तावेज।
हाँ,
तो ये जो दोहरा नजरिया है, एक पत्रकार की जमीनी हकीकत और एक इतिहासकार की वो दस्तावेजी पड़ताल, इसी ने शिरर के विश्लेषण को इतनी गहराई और विश्वसनीयता दी है।
तो ये किताब द राइज एंड फॉल ऑफ द थर्ड राइक, ये करती क्या है, इसका दायरा क्या है?
ये नाजी जर्मनी के जन्म से लेकर उसके विनाश तक की पूरी कहानी कहती
पूरी
है।
कहानी।
हाँ बिल्कुल, शुरू से। पहले विश्व युद्ध के बाद म्यूनिक की गलियों में एक नाकाम सैनिक एडोल्फ हिटलर के राजनीतिक सफर से शुरू होकर 1945 में बर्लिन के खंडहरों में उसके शासन के अंत तक सब कुछ।
और किताब का जो मूल सवाल है वो क्या है?
सवाल बहुत गहरा है कि जर्मनी जैसा देश, जो उस समय विज्ञान में, कला में, दर्शन में इतना आगे माना जाता था, वो इतनी भयानक बर्बरता में कैसे डूब गया? उसने ऐसा विनाशकारी युद्ध क्यों छेड़ा? और शिरर का जवाब, जिस पर बाद में इतिहासकारों में काफी बहस भी हुई, वो ये है कि ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। उनका तर्क ये है कि जर्मनी के इतिहास में ही कुछ ऐसी धाराएं थीं, जैसे सत्तावादी शासन का एक लंबा इतिहास रहा है, सेना का बहुत प्रभाव था, राष्ट्रवाद बहुत उग्र था।
हाँ,
इन सब ने मिलकर ना नाजीवाद के लिए एक तरह से जमीन तैयार कर दी थी।
और फिर पहले विश्व युद्ध की हार का सदमा, वो वर्साय की संधि का अपमान और वाइमार गणराज्य की जो आर्थिक तबाही थी।
बिल्कुल, उसने उस जमीन को और उपजाऊ बना दिया। लेकिन शिरर ये भी साफ करते हैं कि ऐसा नहीं है कि ये होना ही था।
अच्छा,
इसमें एडोल्फ हिटलर का जो व्यक्तित्व था, उसकी जो जबरदस्त इच्छा शक्ति थी, उसकी भाषण देने की कला, उसका भी बहुत बड़ा हाथ था। वो एक तरह से कैटलिस्ट या उत्प्रेरक था।
हाँ, वो चिंगारी उसी ने लगाई।
हाँ,
और किताब ये भी दिखाती है कि कैसे उसने और नाजी पार्टी ने लोकतांत्रिक संस्थाओं को धीरे धीरे कानूनी तरीकों का ही इस्तेमाल करके अंदर से खोखला कर दिया।
वो ग्लाइशेल्टिंग वाला कॉन्सेप्ट।
हाँ, वही समन्वय।
और ये किताब सिर्फ राजनीतिक दावपेच या लड़ाइयों का ब्यौरा नहीं है।
नहीं,
ये प्रोपेगेंडा के मनोविज्ञान का भी अध्ययन है। कैसे झूठ को सच बनाकर जनता को गुमराह किया जा सकता है, ये दिखाती है कि कैसे असीमित शक्ति जो है वो नैतिक पतन और आखिरकार आत्मविनाश की ओर ले जाती है।
तो चलिए अब जरा इससे जो मुख्य हिस्से हैं उन पर नजर डालते हैं, कैसे ये कहानी आगे बढ़ती है।
हाँ, तो किताब की शुरुआत होती है हिटलर के उदय से, मतलब 1918 से 1933 का दौर।
ओके।
पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ है, जर्मनी हारा हुआ है, अपमानित है, आर्थिक रूप से बिल्कुल तबाह है। इसी माहौल में हिटलर वियना से म्यूनिक आता है। कला में तो असफल हो चुका था, अब राजनीति में किस्मत आजमाता है। और यहीं पर उसकी जो यहूदी विरोधी भावनाएं थीं और वो कट्टर राष्ट्रवाद था, वो और मजबूत होते हैं।
और फिर वो 1923 वाला बियर हॉल पुच, वो तख्ता पलट की कोशिश।
हाँ, वो एक अहम मोड़ था। वो असफल रहा, लेकिन हिटलर ने उससे सीखा कि सत्ता बंदूक से नहीं बल्कि बैलेट बॉक्स से मिलेगी। मतलब मौजूदा व्यवस्था का ही इस्तेमाल करके सत्ता में आना होगा।
अच्छा।
जेल में उसने माइंड काम्स लिखी,
मेरी लड़ाई,
जिसमें उसने अपने वो सारे नस्लवादी विचार, तानाशाही की चाहत और जर्मनी के विस्तार, वो जिसे लेबेंसराम कहता था,
हाँ, लिविंग स्पेस,
उसकी पूरी योजना दुनिया के सामने रख दी थी। हालांकि उस समय ज्यादा लोगों ने उसे गंभीरता से लिया नहीं।
और फिर आई 1929 की महामंदी।
हाँ, उसने वाइमार गणराज्य की कमरी तोड़ दी और नाजियों के लिए दरवाजे खोल दिए।
उनका प्रोपेगेंडा भी तो बहुत शातिर था, है ना?
बहुत।
किसानों से अलग वादे, मध्यवर्ग से अलग, उद्योगपतियों से अलग, उन्होंने डर और गुस्से को भुनाया। और जर्मनी के जो पुराने नेता थे वो सोचते रहे कि वो हिटलर को काबू में कर लेंगे।
और इसी चक्कर में जनवरी 1933 में उसे चांसलर बना दिया।
हाँ, और यहीं से खेल बिल्कुल बदल गया।
इसके बाद शुरू होता है दूसरा दौर सत्ता पर पकड़ मजबूत करने का, 1933-1939। और ये रफ्तार तो मतलब चौंकाने वाली है।
बहुत तेज। कुछ ही हफ्तों में राइक्सटैग जो उनकी संसद थी उसमें आग लगती है। इल्जाम कम्युनिस्टों पर डालकर नागरिक आजादियां छीन ली जाती हैं। फिर आता है इनेबलिंग एक्ट, जिससे हिटलर को कानून बनाने की सारी शक्ति मिल जाती है। वो फैक्टरली तानाशाह बन जाता है।
और इसी दौर में बाकी सब पार्टियां, ट्रेड यूनियन, स्वतंत्र प्रेस, सब खत्म।
सब खत्म। गेस्टापो, जो खुफिया पुलिस थी, उसका आतंक फैलता है। कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स खुलने लगते हैं। यहूदियों के खिलाफ कानून बनने लगते हैं।
शिक्षा, कला, मीडिया, हर चीज पर नाजी विचारधारा थोपती जाती है। और फिर 1934 की वो नाइट ऑफ द लॉन्ग नाइव्स,
हाँ, जब उसने अपने ही पार्टी के विरोधियों को,
हाँ, जैसे अर्नस्ट रॉयम और एसए के नेताओं को मरवाकर सेना का समर्थन पक्का कर लिया, अपनी सत्ता बिल्कुल मजबूत कर ली।
और इसी बीच वो विदेश नीति में भी बड़े जुए खेल रहा था और जीत भी रहा था।
बिल्कुल। रायनलैंड में सेना भेजना, ऑस्ट्रिया पर कब्जा कर लेना, आंश्लुस, पश्चिमी देश मतलब ब्रिटेन, फ्रांस, वो या तो देखते रहे या फिर तुष्टीकरण की नीति अपनाते रहे।
वो म्यूनिख समझौता 1938 शायद इसी का सबसे बड़ा उदाहरण था।
हाँ, चेकोस्लोवाकिया संकट और म्यूनिख समझौता शिरर दिखाते हैं कि कैसे हिटलर बाहर तो शांति की बातें करता था पर अंदर ही अंदर युद्ध की तैयारी कर रहा था।
और फिर आता है तीसरा भाग, युद्ध की राह, 1939 से 1941।
हाँ, चेकोस्लोवाकिया के बचे कुचे हिस्से पर भी कब्जा कर लिया, फिर सोवियत संघ के साथ वो चौंकाने वाला समझौता किया जो किसी ने सोचा नहीं था,
नाजी सोवियत पैक्ट।
जी।
और आखिरकार 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर हमला और बस द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया।
शुरुआती साल तो जर्मनी के लिए जबरदस्त कामयाबी वाले थे, वो ब्लिट्सक्रिग, तड़ित युद्ध।
हाँ, पोलैंड पर सफलता, फिर डेनमार्क, नॉर्वे, फिर बेल्जियम, नीदरलैंड्स और सबसे बड़ा झटका फ्रांस का पतन 1940 में।
ये तो हिटलर की शक्ति का चरम था शायद।
बिल्कुल, ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन यहीं पर शिरर एक निर्णायक मोड़ की ओर इशारा करते हैं।
क्या?
एक तो ब्रिटेन की लड़ाई, बैटल ऑफ ब्रिटेन में जर्मन वायुसेना की हार, और उससे भी बड़ा जून 1941 में सोवियत संघ पर हमला, ऑपरेशन बारबारोसा।
हाँ, ये तो बहुत बड़ा फैसला था।
और शिरर इसे अंत की शुरुआत मानते हैं। ये हिटलर का सबसे बड़ा जुआ था जो आखिरकार उसी पर भारी पड़ा।
लेकिन शुरुआत में तो वहां भी जीत मिल रही थी।
हाँ, शुरुआती जीत मिली, लेकिन रूस की विशालता, वहां की भयानक सर्दी, सोवियत सेना का वो जबरदस्त प्रतिरोध और फिर हिटलर का सेना के मामलों में बढ़ता दखल, वो खुद ही कमान में बन बैठा था।
और जमीनी हकीकत से कट जाना, ये सब हार के कारण बने। स्टालिनग्राड में जो हार हुई 1942-43 में, वो एक बहुत बड़ा झटका था।
और इसी दौरान वो अंतिम समाधान वाली बात।
हाँ, युद्ध की आड़ में यूरोप के यहूदियों का योजनाबद्ध नरसंहार, जिसे फाइनल सॉल्यूशन कहा गया, वो अपनी चरम बर्बरता पर पहुंच रहा था।
शीरर दस्तावेजों से ये साबित करते हैं कि ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था।
बिल्कुल नहीं, ये नाजी विचारधारा का मूल हिस्सा था, पहले से तय था।
अब युद्ध का रुख पलट चुका था, तो अंत की शुरुआत 1942-1945 वाले हिस्से में क्या है?
इसमें हम देखते हैं कि कैसे मित्र राष्ट्र मजबूत होते गए। उत्तरी अफ्रीका में हार हुई इटली पर मित्र देशों का हमला हुआ, जर्मन शहरों पर भयानक बमबारी होने लगी। जर्मनी के अंदर भी विरोध की कुछ आवाजें उठी, जैसे वो व्हाइट रोज छात्रों का आंदोलन था,
सोफी शोल और उनके भाई,
या फिर 20 जुलाई 1944 का हिटलर को मारने का वो असफल प्रयास। लेकिन इन सबको बहुत बेरहमी से कुचल दिया गया।
और फिर आता है बिल्कुल अंतिम पतन, 1944-1945 का दौर।
हाँ, 6 जून 1944 को डी-डे लैंडिंग हुई, पश्चिमी मोर्चा खुल गया, पूर्व से सोवियत सेना बर्लिन की तरफ बढ़ रही थी।
हिटलर का आखिरी दाव भी तो था, बैटल ऑफ द बल्ज।
हाँ, वो भी नाकाम रहा, और अंत में बर्लिन में वो बंकर के अंदर के आखिरी दिनों का शिरर ने जो वर्णन किया है वो रोंगटे खड़े कर देता है।
कैसा?
एक भ्रमित, बीमार, हकीकत से बिल्कुल कटा हुआ हिटलर, ईवा ब्राउन से शादी, एक नफरत भरी वसीयत लिखना, और फिर 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या।
और कुछ दिनों बाद जर्मनी का आत्मसमर्पण।
हाँ, 1000 साल का राइख सिर्फ 12 साल चला।
तो इस पूरी इतनी बड़ी कहानी से जो बड़े सबक या थीम्स निकलते हैं वो आज के लिए क्या हैं?
सबसे पहला तो शायद यही है कि लोकतंत्र कितना नाजुक होता है। वाइमर गणराज्य का पतन दिखाता है कि आर्थिक संकट हो, राजनीतिक ध्रुवीकरण हो, नेताओं की गलतियां हो, ये सब मिलकर लोकतंत्र को अंदर से खोखला कर सकते हैं।
ये सोचना कि अरे हमारे यहाँ ऐसा थोड़ी हो सकता है, ये खतरनाक है।
बहुत खतरनाक है। दूसरा, प्रोपेगेंडा और जनमत को नियंत्रित करने की ताकत।
हाँ, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है।
नाजियों ने दिखाया कि रेडियो, फिल्म जैसे उस जमाने के नए माध्यमों का इस्तेमाल करके झूठ को कैसे सच बनाया जा सकता है।
हिटलर का वो बड़ा झूठ वाला सिद्धांत।
हाँ, कि इतना बड़ा झूठ बोलो और उसे बार बार दोहराओ कि लोग यकीन कर लें। ये आज के सोशल मीडिया और फेक न्यूज के दौर में एक सीधी चेतावनी है ना?
बिल्कुल, हमें सूचनाओं को लेकर बहुत मतलब बहुत सजग रहने की जरूरत है।
तीसरा, जिसे हाना एरेंट ने बुराई की साधारणता कहा था,
बनालिटी ऑफ इविल।
अच्छा, शीरर बताते हैं कि कैसे लाखों आम जर्मन लोग डर से या लालच से या सिर्फ आदेश मानते हुए इस भयानक तंत्र का हिस्सा बन गए। होलोकॉस्ट जैसे अपराध किसी पागलपन में नहीं हुए, बल्कि ठंडे दिमाग से, फाइलों और आदेशों के जरिए एक पूरी नौकरशाही ने अंजाम दिए। ये बात इसे और भी ज्यादा डरावना बना देती है।
सच में। चौथा सबक क्या होगा?
अंतर्राष्ट्रीय निष्क्रियता और तुष्टीकरण के नतीजे। किताब बार बार दिखाती है कि कैसे ब्रिटेन और फ्रांस की शुरुआती हिचकिचाहट ने हिटलर का हौसला बढ़ाया।
जब उसे रोका जा सकता था तब कड़े कदम नहीं उठाए।
नहीं उठाए। ये आज भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए एक सबक है कि आक्रामकता को शुरुआत में ही पहचानना और रोकना जरूरी है।
और पांचवा,
व्यक्तिगत साहस और नैतिक जिम्मेदारी का महत्व।
हाँ,
इतने अंधेरे दौर में भी कुछ लोग थे जिन्होंने विरोध किया, आवाज उठाई, भले ही उसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। ये याद दिलाता है कि हर व्यक्ति के पास चुनाव करने का विकल्प होता है, और मुश्किल हालात में भी सही के साथ खड़ा होना मायने रखता है।
किताब में कुछ ऐसी पंक्तियां या विचार हैं जो खासतौर पर याद रह जाते हैं?
हाँ, कई हैं, जैसे हिटलर का वो जनवरी 1939 का भाषण।
हाँ,
जहाँ उसने राइक्सटैग में खुलेआम कहा था कि अगर युद्ध हुआ तो नतीजा यूरोप से यहूदी नस्ल का विनाश होगा।
बाप रे, खुलेआम कहा था?
खुलेआम। ये दिखाता है कि नरसंहार का इरादा कितना पहले से तय था और कितना खुला था। दुनिया ने शायद सुना पर समझा नहीं या यकीन नहीं किया।
और वो माइंड कॉम्फ वाला विचार भी तो है कि आम लोग छोटे झूठ के बजाय बड़े झूठ पे ज्यादा आसानी से यकीन कर लेते हैं।
बिल्कुल, ये नाजी प्रोपेगेंडा की पूरी रणनीति थी, भावनाओं को भड़काना, एक दुश्मन गढ़ना और एक शानदार भविष्य का झूठा सपना दिखाना। आज भी देखिए ऐसी तकनीकें इस्तेमाल होती हैं।
हाँ, होती तो है।
शिरर का एक और अवलोकन जो मुझे महत्वपूर्ण लगा वो नाजी शिक्षा पर था।
अच्छा।
कि कैसे पूरी पीढ़ी को ये सिखाया जा रहा था कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज राइट, यानी ताकत ही सच है, नैतिकता कोई मायने नहीं रखती।
ये तो बहुत खतरनाक है, ये तो पूरी पीढ़ी को ही बगाड़ देना हुआ।
हाँ, तानाशाही कैसे भविष्य की पीढ़ियों को भी जहरीला बना सकती है, ये उसका उदाहरण है।
तो इस सब इतिहास से, इस किताब से हम आज क्या सीख सकते हैं, मतलब अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे लागू करें?
देखिए, पहली बात तो ये कि तानाशाही के जो शुरुआती लक्षण होते हैं उन्हें पहचानना सीखें।
जैसे?
जैसे जब मीडिया की आज़ादी पर हमला होने लगे, न्यायपालिका को कमजोर करने की कोशिश हो, अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जाए, किसी एक नेता की अंधभक्ति शुरू हो जाए, तो ये खतरे की घंटी समझनी चाहिए। हमें सजग रहना होगा।
बिल्कुल।
दूसरी बात क्या हो सकती है?
मीडिया साक्षरता और आलोचनात्मक सोच।
हाँ, ये आज के जमाने में तो बहुत ही जरूरी है।
बहुत ज्यादा।
आज सूचनाओं का सैलाब है, व्हाट्सएप है, टीवी है, इंटरनेट है, कौन सी खबर सच्ची है, कौन सी झूठी, किसका क्या एजेंडा है, ये समझना जरूरी है।
हर चीज पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना है। हाँ। सवाल पूछना है, अलग अलग स्रोत देखने हैं।
सही कहा। तीसरी बात, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भागीदारी।
मतलब वोट देना?
हाँ, वोट देना तो है ही, साथ ही अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जानना, स्थानीय मुद्दों पर आवाज उठाना। देखिए, अगर अच्छे और जागरूक लोग राजनीति से या सामाजिक मुद्दों से दूर रहेंगे तो फिर गलत लोगों को ही मौका मिलेगा ना।
हाँ, ये तो है, उदासीनता बहुत खतरनाक हो सकती है।
और आखिर में, अंधराष्ट्रवाद से बचना।
अंधराष्ट्रवाद मतलब?
मतलब अपने देश से प्यार करना अच्छी बात है, हम सब करते हैं, लेकिन जब ये प्यार दूसरों के प्रति नफरत में बदल जाए या आक्रामकता में बदल जाए तो ये खतरनाक हो जाता है। शिरुर की किताब दिखाती है कि कैसे राष्ट्रवाद के नाम पर कितने भयानक अपराध किए गए। सच्ची देशभक्ति अपने समाज की कमियों को दूर करने और उसे बेहतर बनाने में है, दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं।
बिल्कुल सही कहा। मेरे लिए तो इस किताब का सबसे बड़ा सबक यही है कि सभ्यता और इंसानियत की जो परत है ना, वो कितनी पतली होती है।
हाँ।
हालात बदलने पर, मुश्किल आने पर कोई भी समाज फिसल सकता है, इसलिए हमें अपने मूल्यों को, अपनी संस्थाओं को लगातार बचाए रखने के लिए कोशिश करते रहना होगा।
और मेरे लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी का एहसास, इतिहास केवल बड़े नेताओं या बड़ी घटनाओं से नहीं बनता, हम सबके छोटे छोटे फैसले, हमारी चुप्पी या हमारी आवाज, ये सब मिलकर इतिहास की दिशा तय करते हैं। शिरर का काम हमें यही याद दिलाता है कि अतीत को भूलना बहुत खतरनाक है, उससे सीखना जरूरी है ताकि वो भयानक गलतियां दोबारा ना हो।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।